नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। मन का वशीकरण। भगवान बुद्ध ने कहा है, भिक्षुओं, मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जानता जिसे नियंत्रित करना उतना ही कठिन हो जितना अदम्य मन को नियंत्रित करना। वास्तव में अदम्य मन को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। भिक्षुओं, मैं ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जानता जिसे नियंत्रित करना उतना ही आसान हो जितना वशीभूत मन को नियंत्रित करना। वास्तव में वशीभूत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। भिक्षुओं, मैं ऐसी कोई भी अन्य वस्तु नहीं जानता जो उतनी ही हानिकारक हो जितना अनियंत्रित या अदम्य मन। वास्तव में अदम्य मन अत्यंत हानिकारक होता है। भिक्षुओं, मैं ऐसी कोई भी अन्य वस्तु नहीं जानता जो उतनी ही लाभदायक हो जितना कि वशीभूत मन। वास्तव में वशीभूत मन अत्यंत लाभदायक होता है। भिक्षुओं, मैं ऐसी कोई भी अन्य वस्तु नहीं जानता जो उतनी ही शोकदायी हो जितना कि एक अदम्य, अनियंत्रित, असुरक्षित एवं असंयमित मन। वास्तव में ऐसा मन अत्यंत शोकदायी होता है। भिक्षुओं, मैं ऐसी कोई भी अन्य वस्तु नहीं जानता जो उतनी ही आनंददायी हो जितना कि एक वशीभूत, नियंत्रित, सुरक्षित एवं संयमित मन। वास्तव में ऐसा मन परम आनंददायी होता है। अंगुत्तर निकाय एकक निपात अदंत वग्गो। क्रमिक प्रशिक्षण। एक बार गणक मौद्गल्यान, पाली में मौद्गल्यान नामक एक गृहस्थ ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास गए। जब भगवान श्रावस्ती के पास माँ विशाखा द्वारा निर्मित विहार में रह रहे थे, गणक मौद्गल्यान के पास पूछने के लिए एक प्रश्न था। उन्होंने पहले यह कहा कि इस जीवन में बहुत सी बातें हैं जो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से की जाती हैं। माँ विशाखा के महल का निर्माण अंतिम सोपान तक चरणबद्ध तरीके से हुआ। ब्राह्मणों को क्रमशः प्रशिक्षित किया जाता है जब वे अपने पवित्र ग्रंथ अर्थात तीन वेदों को सीखते हैं। धनुर्विद्या सीखने वाले अपने कौशल को सीखने तथा अभ्यास करने का कार्य क्रमशः करते हैं। व्यापारी अंशों में गणना करना सीखते हैं। अतः उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा, तो क्या यह संभव नहीं है हे गौतम कि आपके सिद्धांतों एवं अनुशासन के विषय में भी उसी प्रकार एक क्रमिक प्रशिक्षण, एक क्रमिक कार्यक्रम तथा एक क्रमिक अभ्यास निर्धारित हो? भगवान बुद्ध ने उन्हें उत्तर दिया, ऐसा संभव है। जैसे एक निपुण अश्व प्रशिक्षक जब उसके पास कोई सुंदर एवं कुलीन अश्व होता है तो सबसे पहले वह उसे लगाम पहनने की आदत डालता है और तब उसे आगे का प्रशिक्षण देता है। उसी प्रकार तथागत जब किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण के लिए स्वीकार करते हैं तो सबसे पहले उसे अनुशासित करते हैं। और भगवान बुद्ध ने धम्म में प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों को गणक मौद्गल्यान को स्पष्ट किया। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले जिसे प्रशिक्षित होना है उसे नैतिक आदतें डालनी होंगी। नैतिकता विकसित हो जाने पर बुद्ध ने इंद्रियों पर नियंत्रण सिखाया। उन्होंने कहा, आँखों से कोई रूप देखकर उसके साधारण या विशेष स्वरूप से सम्मोहित न हो, क्योंकि यदि आपकी दृष्टि अनियंत्रित है तो इच्छा और निराशा का प्रवेश हो सकता है। अशुभ एवं अकुशल मनोदशाएं अंदर घुस सकती हैं। इसी प्रकार का नियंत्रण अन्य इंद्रियों अर्थात श्रवण, गंध, स्वाद, स्पर्श तथा मन पर बनाए रखना चाहिए। तत्पश्चात बुद्ध ने भोजन में संयम सिखाया। भोजन में संयम पा लेने के बाद सतर्कता की बात आती है। दिन में चलते और बैठते समय तथा रात में लेटते समय अर्थात हर समय मन को बाधक मनोदशाओं से परिशुद्ध करना चाहिए। सोते जाते समय व्यक्ति में विश्राम के पश्चात उठने के विचार का अभिप्राय होना चाहिए। सतर्कता विकसित करने के बाद व्यक्ति को वह जो भी कर रहा है उसका स्पष्ट संज्ञान और जागरूकता बनाए रखने के लिए काम करना चाहिए। जागरूकता उपलब्ध हो जाने के बाद उसे पांचों निवरणों या बाधाओं पर विजयी होना चाहिए। जागरूकता के माध्यम से हम लोभ और दुर्भावना से मन को शुद्ध कर सकते हैं। दुर्भावना से मुक्त हम सभी के प्रति अनुकंपावान तथा दयालु होंगे और हम आलस्य एवं तंद्रा को समाप्त कर सकते हैं। प्रकाश का अनुभव होने से हम आलस्य एवं तंद्रा से मुक्त हो जाते हैं। हम व्याकुलता एवं खेद को समाप्त करते हैं जिससे हमारा मन शांत हो जाए और संदेह से छुटकारा पाकर हम लाभदायक मनोदशाओं के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं। पांचों निवरणों के उन्मूलन के साथ समाधि अर्थात ध्यान पाली में ध्यान की अवस्था का विकास संभव है। यह विशेष रूप से भिक्षुओं के लिए है जिनका जीवन अधिक शुद्ध होता है। अपनी महान पवित्रता के कारण वे चित्त एकाग्रता के इन उच्च स्तरों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। हम गृहस्थ लोगों के लिए एकाग्रता का केवल एक अच्छा स्तर प्राप्त करना ही पर्याप्त होता है। बुद्ध ने अपने उपदेश के समापन में कहा कि वे लोग जो अभी तक पूर्ण जागृति नहीं प्राप्त कर पाए थे वे अभी भी विद्यार्थी थे और मुक्ति प्राप्त करने की आशा से काम कर रहे थे तथा जो लोग पूर्ण जागृति प्राप्त कर चुके थे वे सुख शांति से अभी और यहीं अर्थात वर्तमान में रह रहे थे। मार्ग पर चलने की आवश्यकता। प्रवचन के समापन पर गणक मोगल्लान के पास एक और प्रश्न था। उन्होंने पूछा कि इस क्रमिक प्रशिक्षण के बाद क्या प्रत्येक व्यक्ति सर्वोच्च लक्ष्य निर्वाण पाली में निब्बान प्राप्त कर लेता है। बुद्ध ने उत्तर दिया कि कुछ तो लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं और कुछ नहीं। तो गणक मोगलान ने पूछा क्यों? चूंकि निब्बान विद्यमान है उसे उपलब्ध करने के लिए मार्ग विद्यमान है और मार्गदर्शन के लिए बुद्ध भी हैं, तो फिर क्यों कुछ लोग लक्ष्य तक पहुंचते हैं और कुछ नहीं? बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें राजगृह पाली में राजगह आधुनिक राजगिर का मार्ग पता है? तो उत्तर था हाँ। तब बुद्ध ने समझाया कि यदि कोई व्यक्ति उनसे राजगह जाने का मार्ग पूछे और गणक मोगल्लान द्वारा मार्ग निर्देश दिए जाने के बाद भी बताए हुए मार्ग पर न जाए तो वह गलत मार्ग पर चला जाएगा। कोई दूसरा व्यक्ति जिसने उस मार्ग निर्देश का अनुसरण किया है वह राजगृह पहुंच जाएगा। अतः राजगृह है, वहां जाने का मार्ग है और कोई मार्ग निर्देश करने वाला भी है, तो ऐसा क्यों है कि कोई सही मार्ग पर चल जाता है और कोई गलत? गणक मोगल्लान ने कहा मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो मात्र मार्गदर्शक हूं। भगवान बुद्ध ने कहा इसी प्रकार निब्बान विद्यमान है, निब्बान के लिए अग्रणी मार्ग विद्यमान है और एक सलाहकार के रूप में मैं विद्यमान हूं, किंतु मेरे द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद मेरे कुछ शिष्य परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और अन्य शिष्य इसे प्राप्त नहीं कर पाते। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो केवल एक मार्गदर्शक हूँ। और यह बात गणक मोगल्लान समझ गए। उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा, ऐसे लोग जिनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है, जो बिना श्रद्धा के भिक्षु बन जाते हैं, जो धूर्त कपटी और विश्वासघाती हैं, जो असंतुलित और अहंकारी हैं, जो कुटिल अपमानजनक और मोहफट हैं, जिन्हें अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, जो भोजन में संयमी नहीं है, जो जागरूकता के प्रति निष्ठावान नहीं है किंतु साधना के प्रति उदासीन हैं और प्रशिक्षण के लिए उत्सुक नहीं हैं, जिन्हें प्रचुरता पसंद है, जो पतित एवं आचार भ्रष्ट हैं तथा एकांतवास से जी चुराते हैं, जो आलसी क्षीण ऊर्जावान भ्रमित जागरूकता विहीन एकाग्र रहित चंचल मन के हैं, जो क्षीण विवेकवान तथा बकवासी हैं, उनमें बुद्ध की समानता के योग्य कुछ भी नहीं है। जो इसके विपरीत अच्छे गुण वाले हैं वे ही बुद्ध की संगत में हैं और उन्होंने बुद्ध की शिक्षा की सराहना उच्चतम शिक्षा के रूप में की तथा त्रिरत्न में शरण लेने के लिए अनुरोध किया। तो हम इस प्रवचन से देख सकते हैं कि भगवान बुद्ध ने चरणबद्ध तरीके से काम करने तथा स्वयं काम करने के महत्व पर जोर दिया। कोई दूसरा हमारा ध्यान हमारे लिए केंद्रित नहीं कर सकता, कोई दूसरा हमारे लिए हमारा मन शुद्ध नहीं कर सकता। एक आचार्य केवल यह बता सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपना काम हमें स्वयं करना होगा। गणक मोगल्लान से अपने प्रवचन में बुद्ध ने कहा कि वे अपने शिष्यों को सती अर्थात जागरूकता सिखाते थे, किंतु उस समय सती के विषय में उन्होंने पूर्ण निर्देश नहीं दिए। ये निर्देश बुद्ध के अन्य उपदेशों में उपलब्ध हैं, जैसे कि आनापान सति सुत्त अर्थात श्वास संज्ञान प्रवचन में। श्वास संज्ञान, जब बुद्ध ने प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया तो अनेक लोग उनकी ओर आकर्षित होने लगे और शीघ्र ही सिखाने के लिए अनेक भिक्षु हो गए। जो साधना द्वारा अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुके थे वे अवस्मिक अर्थात नवदीक्षित भिक्षुओं को प्रशिक्षित करने लगे। वे नए भिक्षुओं को नैतिक प्रशिक्षण में स्थापित करते, तत्पश्चात उन्हें कैसे प्रसब्धि अर्थात शांति तथा अंतर्दृष्टि प्राप्त हो यह सिखाते। एक बार अनेक भिक्षु बुद्ध के पास एकत्रित हुए। उन्होंने उस पूरे भिक्षु समुदाय को देखा और बोले, भिक्षुओं, यह परिषद निरर्थक शब्दों से रहित है। इस सभा का कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं है, यह शुद्ध मार्ग पर स्थापित है। जैसा भिक्षु संघ यह है वैसा भिक्षु संघ श्रद्धा सम्मान उपहार तथा यह विश्व के लिए एक अतुलनीय पुण्य क्षेत्र है ऐसे भाव के साथ लोगों द्वारा करबद्ध अभिवादन के योग्य है। भिक्षुओं, ऐसा भिक्षु संघ जैसा यह है उसे यदि थोड़ा दिया जाए तो अधिक हो जाता है और अधिक दिया जाए तो अत्यधिक हो जाता है। उन्होंने घोषणा की कि उस संघ में ऐसे भी भिक्षु थे जो लक्ष्य के सभी चार चरणों में स्थापित हो गए थे तथा अन्य भिक्षु लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही प्रकार से साधना कर रहे थे और उन्होंने साधना का विस्तृत विवरण भी दिया। आश्वास तथा प्रश्वास के संज्ञान की हमारी इस साधना में जो विवरण उपयोगी हैं वे इस प्रकार हैं। तैयारी के लिए हम अच्छा मानसिक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। विकसित करने के लिए बुद्ध ने चार मनोभावों का वर्णन किया है, मैत्री पाली में मेत्ता, करुणा मुदिता अर्थात परोपकार में आनंद तथा समभाव या उपेक्षा पाली में उपेक्षा। बौद्ध देशों में रहने वाले लोग अपने दैनिक जीवन में इनको विकसित करने का प्रयास करते हैं और हम भी वही कर सकते हैं। काम करते समय या खेलते समय जब भी हम दूसरों के प्रति निष्काम प्रेम, दूसरों के प्रति करुणा, दूसरों की सफलता पर आनंद की सहानुभूति तथा एक संतुलित शांत समभावयुक्त मन का अनुभव करते हैं, तब हम नैतिक जीवन के जीने के लिए तैयार होते हैं तथा हमारे लिए ध्यान केंद्रित करना सरल हो जाता है। यहाँ हमारे लिए, जबकि हम श्वास संज्ञान की साधना कर रहे हैं, बुद्ध द्वारा दिए गए अगले निर्देश अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बुद्ध ने कहा, आन अर्थात आश्वास एवं अपान अर्थात प्रश्वास का संज्ञान जब विकसित हो जाता है तथा बारंबार उसका अभ्यास किया जाता है तो वह महान प्रतिफल एवं लाभ लाता है। तो यह कैसे किया जाता है? एक भिक्षु किसी वन में एक वृक्ष के आधार पर या किसी एकांत स्थान पर पालथी मारकर बैठता है तथा शरीर को सीधा रखते हुए अपने समक्ष अपना ध्यान केंद्रित करता है। ध्यान के साथ वह श्वास लेता है तथा ध्यान के साथ वह श्वास छोड़ता है। वह अच्छी तरह जानता है, विचारों की गतिविधियों को शांत करते हुए मैं श्वास ले रहा हूँ, विचारों की गतिविधियों को शांत करते हुए मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। इस प्रकार वह स्वयं को प्रशिक्षित करता है। चित्त को एकाग्र करते हुए मैं श्वास ले रहा हूँ, चित्त को एकाग्र करते हुए मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। नश्वरता का पर्यवेक्षण करते हुए अर्थात समझते हुए मैं श्वास ले रहा हूँ, नश्वरता समझते हुए मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। इस प्रकार वह स्वयं को प्रशिक्षित करता है। तो भिक्षुओं, इस प्रकार आन एवं अपान का बोध जब विकसित हो जाता है तथा बारंबार उसका अभ्यास होता है तो उससे महान पुरस्कार एवं लाभ आते हैं। आइए हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करते हैं जिनका श्वास संज्ञान के माध्यम से एकाग्रता का विकास करते समय स्मरण होना चाहिए। यह भगवान बुद्ध के एक दूसरे महत्वपूर्ण प्रवचन सतिपट्ठान सूत्र पर आधारित है। ग्रंथ में लिखा है, स सतो वा अससति, सतो वा पससति, अर्थात वह सति के साथ श्वास लेता है, सति के साथ श्वास छोड़ता है। इसका अर्थ है कि ध्यानी को अपने आनापान के अभ्यास में प्रत्येक आन अंदर आने वाली श्वास तथा अपान बाहर जाने वाली श्वास के प्रति जागरूक रहना चाहिए। बिना जागरूकता या संज्ञान के कोई भी श्वास आने या जाने नहीं देना चाहिए। परिमुखम सतिम उपट्ठपेत्वा, ध्यानी अपना ध्यान अपने समक्ष लाता है। उपट्ठपेत्वा क्रिया का शाब्दिक अनुवाद वर्तमान बनाता है भी हो सकता है। यह सक्रियता से वर्तमान क्षण के एवं ध्यान के विषय वस्तु के संज्ञान के महत्व को रेखांकित करता है। हमें अपना ध्यान सामने नासिका द्वार पर रखना है और सीधे आन पर, अपान पर तथा उस स्थान पर जहाँ हवा का स्पर्श होता है मन को किसी अन्य विषय पर बिना भटकने देते हुए ध्यान लगाना है। ध्यान सदैव नाक के निचले भाग पर या ऊपरी होंठ पर रखा जाता है। हमारी सति बिना किसी बाधा के निरंतर बनी रहनी चाहिए। सत्यम अविजाहंतो, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति भुलक्कड़ है या पूरी तरह से अवगत नहीं है तो श्वास संज्ञान का विकास असंभव है, ध्यान की साधना सफलतापूर्वक नहीं हो सकती। हमें सति के नेतृत्व में विवेक द्वारा पर्यवेक्षण करना चाहिए। पंजया संलक्षितब्बम, इसका अर्थ है कि प्रत्येक आश्वास एवं प्रश्वास को भली भांति जानना। आचार्य बुद्धघोष का कहना है कि आश्वास और प्रश्वास लंबी नाक वाले व्यक्ति के नाक में नीचे तथा छोटी नाक वाले व्यक्ति के ऊपरी होंठ पर प्रहार करते हैं। स्मरण रखने के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बिंदु या स्थान पर हवा का स्पर्श स्पष्ट है, वहीं हमें अपनी मानसिक एकाग्रता को स्थापित करना है। मानसिक संस्कृति, मानसिक प्रशिक्षण या ध्यान की साधना के लिए पाली शब्द है भावना। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं, ध्यान के दो प्रकार होते हैं, समथ, पाली में समथ या शांति का विकास जो एकाग्रता के साथ होता है, तथा अंतर्दृष्टि या विवेक का विकास। बुद्ध ने कहा, भिक्खुओं, रोग दो प्रकार के होते हैं। कौन दो? शरीर का रोग तथा मन का रोग। भिक्खुओं, ऐसे प्राणी हो सकते हैं जो शारीरिक रोग की पीड़ा से एक वर्ष के लिए मुक्त हों या यहाँ तक कि 100 वर्ष तक मुक्त हों, किंतु भिक्खुओं जो विकार मुक्त हो चुके हैं अर्थात अरहत हैं, उनके अतिरिक्त इस विश्व में ऐसा कोई भी प्राणी जो एक पल के लिए भी मानसिक रोग से मुक्त हो, ढूंढने से भी पाना कठिन है। आनापान की साधना जो एकाग्रता एवं शांति की ओर ले जाती है, एकमात्र बौद्ध धर्म में ही नहीं है। बुद्ध शासन अर्थात वह काल जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं की साधना पाई जाती है, उस अवधि के बाहर भी इस प्रकार की साधना जानी जा सकती है। बौद्ध ग्रंथों में इस प्रकार की साधना के लिए 40 विधियां बताई गई हैं और इनके द्वारा साधक उच्चतम समाधि या ध्यान, पाली में ध्यान की अवस्था में पहुंच सकते हैं। किंतु ये अवस्थाएं चाहे कितनी भी शुद्ध और उच्च स्तर की क्यों न हो, वास्तव में ये मात्र मानसिक रचनाएं हैं। वे मन द्वारा निर्मित, अनुबंधित एवं संयोजित हैं। वे परम सत्य नहीं हैं और वे निब्बान की प्राप्ति के लिए आवश्यक भी नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति इन मनोदशाओं को प्राप्त कर ले तो वह अस्थायी रूप से मन को दोषमुक्त कर सकता है। जब तक कोई इस तरह की शुद्ध अवस्था में रहता है, तब तक मन भी शुद्ध रहता है। किंतु अशुद्धता की प्रवृत्ति की गहरी जड़ें तब भी विद्यमान रहती हैं। इन गहरी बैठी अशुद्धियों का उन्मूलन मात्र अंतर्दृष्टि के माध्यम से ही हो सकता है। बौद्ध धर्म की यही विशिष्टता या अद्वितीयता है। किंतु हमें स्पष्ट रूप से यह ध्यान में रखना चाहिए कि अंतर्दृष्टि के लिए सति अत्यंत आवश्यक है और यह कितना कठिन हो सकता है उसे समझने का हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है। प्रारंभ में तो आपको लगेगा कि अपना ध्यान श्वास पर केंद्रित करना अत्यंत कठिन है। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपका मन कैसे भागता है, यहाँ तक कि वह कुछ सेकंड के लिए भी नहीं टिकता। अतः आपको साभिप्राय अर्थात जानबूझकर श्वास लेने की आवश्यकता पड़ेगी तथा श्वास पर निरंतर एवं अविचल ध्यान के लिए प्रयास करना पड़ेगा। तब कुछ समय के बाद आप ऐसा अनुभव करेंगे कि एक पल के लिए आपका ध्यान संपूर्ण रूप से श्वास पर केंद्रित हो गया है, यहाँ तक कि आसपास की ध्वनियाँ भी नहीं सुनाई देंगी। आपके लिए कोई बाहरी दुनिया नहीं मौजूद होगी। यह क्षण आपके लिए आनंद, सुख एवं शांति से भरपूर ऐसा अद्भुत अनुभव होगा कि आप इसे बनाए रखना चाहेंगे, किंतु आप इसे टिके रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। फिर भी यदि आप लगातार और अविचल अभ्यास करते रहें तो आप यह अनुभव बार बार तथा लंबी लंबी अवधि के लिए वापस प्राप्त कर सकते हैं। आनापान की ही साधना है जो सभी बुद्धों एवं उनके प्रमुख शिष्यों द्वारा की गई है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि यह अत्यंत परिष्कृत, सूक्ष्म तथा शक्तिशाली है। इसके लिए अच्छी एकाग्रता और अच्छी बुद्धि की आवश्यकता होती है। सयाजी उबाखी के शब्दों में, हमारे लिए एक में तीन अर्थात स्थान, आश्वास एवं प्रश्वास, तीनों का संज्ञान लेते रहना आवश्यक है। आज प्रातःकालीन प्रवचन में हमने एक में तीन का दृष्टांत बुद्ध घोष के विशुद्धि मार्ग के उद्धरण से दिया था। आइए अब हम उनकी एक और उपमा, घंटे की उपमा की चर्चा करते हैं। जब साधक के स्थूल आश्वास एवं प्रश्वास समाप्त हो जाते हैं, तब उसकी चेतना सूक्ष्म आश्वास एवं प्रश्वास के संकेत के आलंबन पर होती है, और जब वे भी समाप्त हो जाते हैं तो उसकी चेतना उत्तरोत्तर सूक्ष्मतर संकेतों के साथ उपजती है। कैसे? मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने लोहे के एक बड़े शलाके से कांसे के घंटे पर प्रहार किया तथा परिणाम स्वरूप तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई। वह सकल ध्वनि उसकी चेतना की वस्तु होगी, और उस सकल ध्वनि के समाप्त होने पर जो सूक्ष्म ध्वनि बनी रहती है वह उसकी चेतना की वस्तु होगी। और इस प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक सूक्ष्मतर संकेत के साथ उसकी जागरूकता उत्पन्न होती रहेगी, क्योंकि यद्यपि ध्यान के अन्य प्रत्येक आलंबन अगले स्तर पर और स्पष्ट होते जाते हैं, किंतु इसके साथ ऐसा नहीं है। वास्तव में जैसे जैसे साधक अपना ध्यान विकसित करता है, वैसे वैसे यह आलंबन प्रत्येक उच्च स्तर पर सूक्ष्मतर होता जाता है, और एक ऐसा भी समय आता है जब उसकी अनुभूति नहीं होती। जब ऐसा हो तो साधक को उठकर अपनी आसनी छोड़कर चले नहीं जाना चाहिए। क्या मुझे अपने आचार्य से पूछना चाहिए या क्या मेरे ध्यान का आलंबन लुप्त हो गया है, ऐसा सोचकर उसे उठ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उठ जाने से या अपने आसन की मुद्रा भंग कर देने से उसे अपने ध्यान की विषय वस्तु अर्थात कर्मस्थान को पुनः प्रारंभ करना होगा। अतः उसे बैठे रहना चाहिए तथा श्वास की अनुभूति की जगह श्वास के स्थान की अनुभूति स्थापित करनी चाहिए। जब सयाजी उबाखी ने आनापान ध्यान की बात की थी तो उन्होंने बताया था कि यह अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत गहन एवं अत्यंत कठिन है। यह उन्हीं के लिए है जिनमें प्रचुर पारमी हो, और यह तथ्य कि आप यहाँ इसकी साधना कर रहे हैं, इससे यह इंगित होता है कि आप में भी पर्याप्त पारमी है। पारमी का अर्थ है परिपूर्णता। आज हम जहाँ भी हैं वह हमारे अतीत के कर्मों का परिणाम है। भगवान बुद्ध ने बताया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से अत्यंत कठिन है। जैसे किसी सागर में एक अंधा कछुआ तैर रहा हो तथा उसी सागर में कहीं बीच में छेद वाला एक रबर का चिन्ह यानि बड़ी गेंद जैसा तरेरी या प्लव भी तैर रहा हो, तो तैरते तैरते उस कछुए के सिर का उस तरेरी के छेद में होकर ऊपर आ जाने की जितनी कम संभावना है, उतनी ही कम संभावना हमारी मनुष्य योनि में पुनर्जन्म प्राप्त करने की है। और ऐसे समय में जब भगवान बुद्ध की शिक्षा भी उपलब्ध हो, अर्थात बुद्ध शासन काल में जीवन प्राप्त करने की संभावना और भी कम है। किसी व्यक्ति की ध्यान में प्रगति तेज या धीमी गति से होगी, यह उसने कितनी तैयारी की है उस पर निर्भर करता है। जब सयाजी उबाखी पहली बार विपस्सना सीखने गए तो उन्होंने प्रशिक्षण के लिए अनुरोध किया और उन्हें आनापान ध्यान के विषय में समझाया गया। उन्होंने प्रयास किया और तत्काल उन्हें प्रकाश दिखना प्रारंभ हो गया। जब उन्होंने अपना पहला पूरा विपस्सना शिविर किया था तो उन्हें दूसरे दिन ही विपस्सना दे दी गई थी। उनकी प्रगति इतनी तीव्र थी कि उन्हें कई दिनों तक आनापान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। माँ श्यामा जी ने भी जब पहली बार आनापान का प्रयास किया तो उन्हें प्रकाश दिखाई दिया। उनका यह पहला प्रयास केवल 10 मिनट या उसके आसपास का था, वह भी एक अनौपचारिक तरीके का। परंतु हम सभी उतनी शीघ्र प्रगति नहीं कर सकते, अतः जो अनुभव हमें न हुए हों, जब कुछ ऐसे अनुभवों का वर्णन हो तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आनापान साधना में आश्वास और प्रश्वास के संज्ञान के लिए पहले आपको सोद्देश्य श्वास लेना चाहिए। इस प्रकार श्वास का स्पर्श और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। जब ऐसा होने लगे तो मन को इसमें विश्राम देते हुए अपनी स्वाभाविक गति से आते जाते आन और अपान का संज्ञान लेते रहें। जैसे जैसे आपकी श्वास हल्की और हल्की होती जाती है, पहले श्वास लंबी और छोटी होगी किंतु हवा का प्रवेश और निकास तो रहेगा ही, किंतु अंततो गत्वा लंबाई घटते घटते लगभग लुप्त हो जाती है तथा आन अपान एवं एकाग्रता का स्थान ये तीनों नासिका के आधार ऊपरी होंठ पर एक हो जाते हैं। ऊपरी होंठ पर इस बिंदु पर आपको हल्की उष्णता की अनुभूति होगी जो हवा की विशेषता है। आपको अपना चित्त इसी पर एकाग्र करना चाहिए और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मन शांत हो जाएगा। इस प्रकार आपको चित्त एकाग्रता प्राप्त होगी और फिर समाधि। जब ध्यान लगाते हुए चित्त एकाग्रता प्राप्त होती है तथा मन शांत हो जाता है तो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से शांत मन की पहली विशेषता उत्पन्न होगी। प्रथम संतोष या प्रीति, पाली में प्रीति, तब आनंद या सुख और उसके बाद शांत मन के लक्षण जैसे प्रकाश उत्पन्न होंगे। इनसे यह संकेत मिलता है कि पवित्रता की अवस्था विद्यमान है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि मन या चित्त स्वयं में शुद्ध एवं दीप्तिमान है, किंतु लोभ द्वेष और अज्ञान की अशुद्ध शक्तियों के अतिक्रमण से ये गुण छिप जाते हैं। जैसे जैसे आप ध्यान लगाते हैं वैसे वैसे आप थोड़ा थोड़ा लोभ घृणा और अज्ञानता की शक्तियों को मन से निकालते हैं तथा मन को शांत करते हैं। जैसा कि हमने देखा विशुद्धि मार्ग में यह लिखा है कि आनापान की साधना कर रहे भिक्षु को बिना आश्वास एवं प्रश्वास दोनों के संज्ञान के नाक के आधार पर संपर्क बिंदु को नहीं तलाशना चाहिए, उसे सभी तीनों बातों का पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त ग्रंथों में लिखा है कि भिक्षु को जागरूकता या सती रूपी लगाम के साथ तथा विवेक या पैया रूपी कोड़े के साथ स्पर्श बिंदु को ढूंढना एवं ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद एक बिंदु पर स्वाभाविक गति से आने और जाने वाली हवा का प्राकृतिक लक्षण बहुत स्पष्ट हो जाएगा तथा आपको इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए जिससे कि यह लुप्त न हो जाए तथा यह कम होगा और अंत में लुप्त हो जाएगा। जब यह लुप्त हो जाए तो आपको सोद्देश्य जानबूझकर श्वास लेते और छोड़ते हुए इस पथ को पुनः खोलकर पूरी प्रक्रिया को दोहराना चाहिए। जो व्यक्ति इस प्रकार बारंबार कुछ समय तक अभ्यास करता है उसके लिए पवित्रता का पहला संकेत उदय होगा। यह संकेत सभी के लिए एक जैसा नहीं हुआ करता। ग्रंथों के अनुसार यह रुई, सितारे या मोतियों जैसा प्रतीत हो सकता है। कुछ व्यक्तियों को यह धुआं, बादल, मकड़ी के जाल, फूलों की सजावट, चांद या सूर्य के समान लग सकता है। संभवतः यह एक प्रकाश की चकाचौंध या उषा की तरह प्रकट हो, किंतु यह केवल इसलिए नहीं प्रकट होगा कि आप ऐसा चाहते हैं। यह आपकी इच्छा करने या प्रार्थना करने से नहीं प्रकट होता। यह आपको स्मरण रखना चाहिए कि जैसे लोग अपनी अपनी उचित जीविकाओं में कार्यरत रहकर धन अर्जित करते हैं, उसी प्रकार आपको भी यह संकेत प्राप्त करने के लिए समुचित रूप से कार्यरत रहना होगा। यदि आपके मन में इस संकेत के उदय होने की इच्छा हो तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका मन इच्छा या लोभ से मुक्त नहीं होगा। यह संकेत तभी उत्पन्न होगा जब व्यक्ति इच्छा से मुक्त होता है, और जब तक आसक्ति प्रबल है यह नहीं उत्पन्न होगा। जैसे ही आप नाक के आधार पर आश्वास और प्रश्वास पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपका मन लोभ, घृणा एवं अज्ञानता से मुक्त हो जाता है, और इस मनोदशा को समाधि कहा जाता है। जिस क्षण ही आपको आभास हो कि आपकी इस एक में तीन की जागरूकता खो गई है तो आपको सोद्देश्य या जानबूझकर श्वास लेते और छोड़ते हुए इस पथ को पुनः खोलना चाहिए। जैसे ही आप इस पथ को पुनः प्राप्त करते हैं आपकी जागरूकता फिर से पैदा होगी और उसके बाद गायब हो जाएगी, क्योंकि विचार निश्चित रूप से उठेंगे। यह जागरूकता जिसके लिए आप इतना संघर्ष कर रहे हैं वह अत्यंत मूल्यवान है, और कई लोग इसी के आधार पर निब्बान प्राप्त कर चुके हैं। आज सायं बस इतना ही। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते। साधु साधु साधु। अब आप 7:30 बजे सायंकाल की सामूहिक साधना प्रारंभ होने तक विश्राम कर सकते हैं।